राजकुमारी डायना ने अपना आखिरी दिन अपने पार्टनर डोडी अल्फायद की नौका के ऊपरी डेक में बिताया। नाश्ते में उन्होंने ताजे जैम के साथ एक एक क्रोइसा खाया। साथ में डायना ने दूध वाली कॉफी ली, जबकि डोडी ने काली कॉफी का मग लिया। उस दिन 11:30 बजे दोनों ने नौका छोड़ दी ताकि वो डोडी के निजी विमान से पेरिस पहुंच सके। जैसे ही डोडी का विमान नीचे उतरा, कैमरा वालों ने उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। शाम को वो दोनों रिट्स होटल पहुंचे। डायना अपने बाल संवरवाने होटल के सैलून में चली गईं और डोडी अपने ज्वेलर से मिलने चले गए। मशहूर पत्रकार क्रिस्टोफर एंडरसन अपनी किताब द डे डायना डाइड में लिखते हैं,
पहले वे दोनों पेरिस के रेस्तरां शे बिनॉय में गए। जब वहां उन्होंने फोटोग्राफरों की भीड़ देखी तो वो लौटकर रिट्स के डाइनिंग रूम में आ गए। वहां डायना ने वेजिटेबल टेम्पोरा का ऑर्डर दिया, जबकि डोडी ने ग्रिल्ड टर्बोट मछली मंगवाई। ऑर्डर देने के तुरंत बाद वो असहज महसूस करने लगे क्योंकि कई आंखें उन्हें घूर रही थीं। उन्होंने तुरंत डाइनिंग रूम छोड़ा और बेरर से कहा कि वो उनका खाना उनके इंपीरियल सूट में पहुंचा दे। डोडी ने योजना बनाई कि उनके ड्राइवर और अंगरक्षक ये आभास देंगे कि वे आगे के गेट से बाहर निकलने वाले हैं, जहां उनकी मर्सिडीज गाड़ियों का काफिला उनका इंतजार कर रहा है। तभी डोडी होटल के पिछले दरवाजे से होटल की दूसरी मर्सिडीज S280 में निकल जाएंगे।
डोडी की योजना सफल रही, लेकिन उस दिन उनके ड्राइवर ऑनरी पॉल ने शराब पी रखी थी। उनके खून में अल्कोहल की मात्रा फ्रांस की कानूनी मान्य सीमा से 3 गुना अधिक थी। जैसे ही वो वहां से निकले, फोटोग्राफरों को इसकी हवा लग गई और वो उनके पीछे मोटरसाइकिलों पर दौड़ पड़े। उनका ड्राइवर उनको छकाते हुए ईफिल टावर के पास पोंदे अल्मा सुरंग के अंदर घुस गया। ठीक 12:23 पर फोटोग्राफरों से बच निकलने की कोशिश कर रही कार सुरंग के कंक्रीट खंभे से जा टकराई। बाद में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया,
वी वर वॉकिंग अलोंग द सेन रिवर एंड वी हर्ड अ ह्यूज एक्सप्लोजन।
हम सेन नदी के किनारे चल रहे थे, तभी हमने एक जोर का धमाका सुना। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत नजदीक से बंदूक से कोई फायर किया और एक कार के टायरों के स्क्रीच की आवाज सुनाई दी।
एक और चश्मदीद ने कहा,
मैं अपनी गर्लफ्रेंड और 3 अन्य पर्यटकों के साथ सुरंग के दरवाजे पर था। ट्रैफिक थोड़ा धीमा हो चला था क्योंकि वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही धमाका हुआ, मैं और एक जर्मन पर्यटक अंदर की तरफ दौड़े ताकि हम कार में सवार लोगों की मदद कर सकें।
1:20 पर एम्बुलेंस वहां पहुंची। एम्बुलेंस पर सवार ऑर्नल डोरोसी ने बीबीसी से बात की।
It was really a wreckage we found with the driver obviously already passed away. I think immediately after the accident.
वहां पर हमें कार नहीं कार का मलबा मिला। ड्राइवर और डोडी की जान जा चुकी थी। कार से 10-20 गज की दूरी पर एक शख्स पड़ा हुआ था और एक मेडिकल टीम उन्हें हर संभव तरीके से मदद कर रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो राजकुमारी जिंदा थी। वो कार की पिछली सीट पर थी और उनका आधा शरीर कार के फर्श और आधा शरीर कार की सीट पर था। वो करीब करीब बेहोश थी और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी।
बीबीसी ने उनसे पूछा, क्या आप याद कर सकते हैं डायना क्या कहने की कोशिश कर रही थी?
It was difficult to really understand, but I think I understood that it was very painful and.
ये समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। वो टूटे हुए शब्दों में कह रही थी कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है।
अमरीकी पैरामेडिक्स स्कूप एंड रन यानी उठाओ और भागो तकनीक में यकीन रखते हैं, जबकि फ्रेंच स्टे एंड प्ले तकनीक में विश्वास रखते हैं। क्रिस्टोफर एंडरसन अपनी किताब द डे डायना डाइड में लिखते हैं,
अभी लेडी डायना रास्ते में ही थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और एम्बुलेंस को रोककर उन्हें AED और CPR दिया गया। 1:45 पर फ्रांस में ब्रिटेन के राजदूत माइकल रे को इस दुर्घटना की सूचना मिली। उन्होंने तुरंत महारानी के निजी सचिव रॉबिन जैनवरन को फोन करके इसके बारे में आगाह कर दिया। ठीक 2:01 पर डायना की एम्बुलेंस अस्पताल में घुसी।
बाद में उस एम्बुलेंस में सवार कई लोगों ने इंटरव्यू दिए। लेडी डायना को CPR देने वाले पैरामेडिक जेवियर गुरमिलान ने बताया,
डायना के पूरे शरीर पर मुझे खून की एक बूंद भी नहीं दिखाई दी। जब मैं उन्हें CPR दे रहा था तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। जब मैंने उनके दिल की मालिश की तो मुझे लगा कि वो ठीक हो रही हैं। जब उनको एम्बुलेंस में लेटाया गया तो उनको सांस आ रही थी। आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये लगा था कि वो बच जाएंगी।
उनको देखने वाले एक और डॉक्टर डैनियल इरोड ने कहा,
पहली बार डायना के दिल की धड़कनें तब रुकी जब उन्हें कार से उतार कर एम्बुलेंस पर चढ़ाया गया, लेकिन कार्डियक मसाज दिए जाने के बाद उनका दिल फिर से धड़कने लगा। एम्बुलेंस में उनकी हालत फिर खराब हुई और डॉक्टरों ने उन पर काम करने के लिए एम्बुलेंस रुकवा दी। जब वो अस्पताल पहुंची तो उनकी हार्ट बीट चल रही थी, लेकिन जल्द ही उन्हें सांस लेने में मदद करने के लिए एक कृत्रिम उपकरण लगा दिया गया।
उसी समय लंदन में ओल्ड बैरक्स में डायना के अंगरक्षक पॉल बरल के घर पर टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर डायना की नजदीकी दोस्त लूसिया फ्लेचा डे लीमा थीं, जो उन्हें वॉशिंगटन अमेरिका से फोन कर रही थीं। उन्हें क्लिंटन के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से पता चला था कि डायना की कार का एक्सीडेंट हुआ है। डायना की निजी सचिव जैकी एलन ने पॉल और डायना के ड्राइवर के लिए पेरिस जाने के लिए जहाज के टिकट बुक किए। उस समय ब्रिटिश एयरवेज के लंदन के सारे दफ्तर बंद थे, इसलिए ये टिकट एयरलाइंस के न्यूयॉर्क ऑफिस से बुक किए गए। सुबह 4 बजे राजकुमारी डायना को मृत घोषित कर दिया गया।
दिस इज BBC रेडियो न्यूज फ्रॉम लंदन। Buckingham Palace has announced the death of Diana, Princess of Wales. The princess, who was 36, died late last night in a car crash in central Paris.
Burrell ne apne ghar jaakar bag mein apna saman liya aur phir wo Diana ke apartment mein chale gaye. Paul Burrell apni kitab A Royal Duty mein likhte hain.
Main Rajkumari ke apartment 8-9 ke piche ke darwaze se andar ghusa. Iske andar pasre sannate ne mujhe buri tarah se vichlit kar diya. मैं उनकी मेज के पास गया। उस पर रखी 3 मिनिएचर घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। एक बीकर में करीब दर्जन भर पेंसिल रखी हुई थीं। एक मेमो शीट पर पत्रों में इस्तेमाल करने के लिए अच्छे शब्दों की सूची लिखी हुई थी। उन्होंने इस बात को कभी नहीं छिपाया कि उनकी अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग बहुत कमजोर थी। फिर मुझे वो तस्बीह दिखाई दी जो उन्हें मदर टेरेसा ने दी थी। वो एक छोटी सी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के चारों ओर लिपटी हुई थी। मैंने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर उनके पसंदीदा परफ्यूम फाउवर्क 24 की आधी इस्तेमाल की हुई बोतल रखी हुई थी। बगल में उनका पैंटीन हेयर स्प्रे, कॉटन बट से भरा हुआ गिलास और कई लिपस्टिक्स रखी हुई थीं। मैंने एक लिपस्टिक और एक पाउडर कॉम्पैक्ट उठाकर एक बैग में रख लिया।
पेरिस में पॉल बरल सीधे फ्रांस में ब्रिटिश राजदूत के निवास पर गए। बरल लिखते हैं,
मैंने राजदूत की पत्नी सिल्विया जे को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे चिंता है कि दुर्घटना के बाद राजकुमारी के कपड़े बहुत खराब हालत में होंगे। उन्हें ये कतई पसंद नहीं आएगा कि लोग उन्हें इस हालत में देखें। सिल्विया जे मुझे अपने वार्डरोब के सामने ले गई और बोली, आपको इसमें से जो भी ड्रेस ठीक लगे उसे चुन लीजिए। मैंने एक काले रंग की पोशाक चुनी। फिर मैंने उनका वर्साचे का साइज 9 का काले रंग का हील वाला जूता भी चुना। फिर हम दोनों अस्पताल के लिए रवाना हो गए। जैसी ही हम उनके प्रवेश द्वार पर पहुंचे, सिल्विया ने मेरा हाथ दबाकर कहा, बी ब्रेव।
जब पॉल बरल को उस कमरे में ले जाया गया जहां डायना का पार्थिव शरीर रखा गया था, तो एक तरफ से नर्स हम्बर्ट ने उनका हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से ड्राइवर कोलिन ने उनकी बांह पकड़ी।
मैंने उनको देखा, वो महिला जिसका मैंने कई सालों तक ख्याल रखा था, एक पलंग पर शांत लेटी हुई थी। गर्दन तक उनका चेहरा एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। मेरे जारों कतार आंसू निकलने लगे। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। कमरे में सिर्फ 2 दर्जन गुलाबों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वेलेरी गिस्का देहस्ता ने भिजवाया था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपनी सारी ताकत जमाकर वहां खड़ी नर्स बिट्रस हम्बर्ट से कहा, मैं राजकुमारी को पहनाने के लिए एक काली पोशाक और जूते लाया हूँ। मेरे पास उनकी एक लिपस्टिक और पाउडर भी है। फिर मैंने अपनी जेब से मदर टेरेसा की दी हुई तस्बीह निकालकर उनसे कहा, क्या आप इसे राजकुमारी के हाथों में रख देंगी? थोड़ी देर बाद जब मैं दोबारा राजकुमारी डायना के पार्थिव शरीर के सामने गया तो मैंने उनको बिल्कुल बदले रूप में पाया। उन्हें अब काली ड्रेस और जूते पहना दिए गए थे। उनके बाल ब्लो ड्राई कर दिए गए थे और उनके हाथ में मदर टेरेसा की दी हुई तस्बीह रखी हुई थी।
उधर प्रिंस चार्ल्स ने महारानी के BE-146 रॉयल जेट में डायना की दो बहनों लेडी सारा और लेडी जेन फिलोज और अपने उप निजी सचिव मार्क बॉलेंट के साथ पेरिस के लिए उड़ान भरी। पेरिस में लैंड करते ही उन्हें सिल्वर रंग की जैगुआर कार में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर फ्रांस के राष्ट्रपति जाक शिराक ने उनका स्वागत किया। वो उनको अस्पताल की दूसरी मंजिल के उस कमरे में ले गए जहां राजकुमारी डायना का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। क्रिस्टोफर एंडरसन अपनी किताब द डे डायना डाइड में लिखते हैं,
तब तक डायना के पार्थिव शरीर को स्लेटी रंग के ताबूत में लिटा दिया गया था। उस ताबूत में शीशे की एक खिड़की सी थी ताकि फ्रेंच कस्टम अधिकारी उससे डायना के चेहरे को देखकर पहचान सकें। उस ताबूत में फॉर्मल डिहाइलाइड और गुलाब और लिली के फूलों की मिश्रित सुगंध आ रही थी। जैसे ही एयर कंडीशनर की हवा से डायना के बाल उड़े, चार्ल्स बहुत भावुक हो गए। उनके होठों से एक आह सी निकली। वो अपनी पूर्व सालियों की तरफ मुड़े जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने उनको दिलासा दिया। फिर चार्ल्स ने बेहतरीन फ्रेंच में उन सब डॉक्टरों को धन्यवाद दिया जिन्होंने डायना का इलाज करने की कोशिश की थी।
जब विमान ने ब्रिटेन की धरती को छुआ तो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर वहां पर डायना के शव का इंतजार कर रहे थे। पॉल बरेल ने लिखा,
8 वायु सैनिकों ने करीब करीब स्लो मोशन में राजकुमारी डायना के पार्थिव शरीर को विमान से नीचे उतारा। फिर हमारी कारों का काफिला मध्य लंदन के लिए रवाना हुआ। सड़क के दोनों तरफ हर कार ड्राइवर ने अपनी कार रोक दी और अपनी कार के सामने डायना के सम्मान में सिर झुकाकर खड़े हो गए। मैंने सोचा अगर डायना जीवित होती तो इस बारे में क्या सोचती। वो शर्म से सिकुड़ते हुए कहती, ओ माई गॉड, वो मेरे लिए अपनी कार रोक रहे हैं, ओ नो।
6 सितंबर 1997 को ठीक 9:08 पर राजकुमारी डायना की शव यात्रा शुरू हुई।
वेल्स की राजकुमारी डायना की अंत्येष्टि सभा लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर एबे में संपन्न की गई है। राज परिवार के सदस्यों, राजनीतिक जगत, कला और रंगमंच के उनके मित्रों ने राजकुमारी के भाई अर्ल स्पेंसर के मर्मस्पर्शी और सशक्त संबोधन को सुना। उन्होंने अपनी बहन को निस्वार्थ मानवता का एक प्रतीक बताया।
उस शव यात्रा में हमारे पुराने साथी ललित मोहन जोशी भी मौजूद थे। उस शव यात्रा के तुरंत बाद उन्होंने BBC हिंदी के आजकल कार्यक्रम में कहा था,
मुझे लगता है कि कम से कम 1,00,000 लोग उसके पूरे उस क्षेत्र में रहे होंगे, बकिंगम पैलेस और हाइड पार्क के पूरे क्षेत्र में। ये जो सारा दृश्य था, जो सारा परिदृश्य था, वो एक अंत्येष्टि का नहीं था बल्कि एक बहुत ही शांत, एक आंदोलन का, एक क्रांति का था। तो ये जो डायना की जो अंत्येष्टि हुई है, ये एक तरह से ऐतिहासिक, एक इतिहास का सृजन हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भावनाएं लोगों की उभर करके आई हैं। और उसमें केवल ब्रिटेन के लोग नहीं थे, पूरे स्पेन से, आपके आयरलैंड से और भारत से, पाकिस्तान से, इतने सारे लोग मुझे मिले। लोगों की प्रतिक्रिया यही थी कि डायना एक अद्भुत व्यक्तित्व था। उनका व्यक्तित्व है वो एक आदर्श व्यक्तित्व कुल मिलाकर बन गया है। और उन्होंने जो किया अपने जीवन में चैरिटीज के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए, और जो आम जनता से, जो एक सड़क के आदमी से, एक गरीब आदमी से जो उनका तादाद में था, उसको लोगों ने दिल के अंदर से महसूस किया। और जब ये कार्रवाई अभी में चल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़े बुजुर्ग, बड़े हट्टे कट्टे नौजवान, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे।
वेस्टमिंस्टर एबे में लेडी डायना को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद मैंने उस समय ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी से पूछा था कि आप राजकुमारी डायना को किस तरह से याद करना चाहेंगे।
सबसे ज्यादा तो उनकी मुस्कान, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनकी आत्मीयता, अपनापन, वो याद आता है। अभी 4 जून को हम उनके साथ, मैं और कमला जी दोनों भोजन करने गए तो 2-2.5 घंटे हम उनके साथ रहे। एक एक क्षण, एक एक कदम पर लगता था कि जैसे हम उनके कितने अपने हैं। ये एक उनकी विशेषता थी, शायद ईश्वर की दी हुई एक विशेष प्रतिभा उनमें थी कि जो उनके पास होता था उनका मन जीत लेती थी। बातें बहुत हुई, भारतवर्ष की बातें बहुत हुई। जब अंदर में जा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर क्रिस्टल का गणेश उनके अपार्टमेंट में था। तो गणेश भगवान को जब देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है, हम लोगों भारतवर्ष के देवता हैं। और हम ऊपर गए तो हमने उनको कहा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने गणेश की इतनी सुंदर क्रिस्टल की प्रतिमा रखी है। तो कहने लगी कि ये बताइए मुझे सारी इसकी पुराण, इसका तत्व, इसका अर्थ बताइए। मैंने जब ये कहा उसी बातचीत के दौरान कि गणेश जी शुभारंभ के प्रतीक देवता है, इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड ऑफ गुड ह्यूमर, तो मुस्कुराने लगी। उनका मुस्कुराने का सम्मोहन था और मुस्कुरा कर कहा तब तो मुझे इनकी जरूरत है। Where lives were torn apart, you called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in.
Rehan Fazal, BBC, Delhi.